नूर अपने ऑफिस में बैठी फाइलों में व्यस्त थी कि तभी उसके फोन की स्क्रीन पर अब्बा लिखा चमका। उसने तुरंत कॉल उठाई। जी अब्बा, क्या बात है? फैजान का फोन आया था, इकबाल साहब ने सीधा कहा। नूर कुछ सेकंड के लिए चुप रह गई। कौन फैजान? उसने अनजाने में पूछ लिया, जैसे उसे यकीन ही ना आया हो। अरे वही, तुम्हारा ऑफिसर, इकबाल साहब बोले। नूर की भौहें हल्का सा सिकुड़ी। मगर किस लिए? उसने तुरंत पूछा। वो आने की बात कर रहा था, इकबाल साहब ने कहा। घर का एड्रेस पूछ रहा था कि हम कहाँ रहते हैं। तो आपने क्या कहा? नूर का लहजा थोड़ा तेज हो गया। मैंने एड्रेस बता दिया, इकबाल साहब बिल्कुल सामान्य अंदाज में बोले। अब बेटा कोई काम होगा उसे, इतना अच्छा लड़का है। नूर ने आंखें बंद करके हल्की सांस ली। उसके अब्बा को क्या पता था कि फैजान सिर्फ उसका सीनियर ऑफिसर नहीं, अब उसकी जिंदगी की उलझनों का हिस्सा भी बनता जा रहा था। अब्बा, आपको पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था, नूर ने धीमे मगर दबे गुस्से में कहा। अरे, इकबाल साहब हंस पड़े। मुझे लगा अब तुम इतनी बड़ी ऑफिसर हो तो उसे भी कोई काम होगा, शायद वारिस वाले मामले में आ रहा हो। बेचारा बड़े प्यार से बात कर रहा था, मैं मना ही नहीं कर सका। नूर कुछ पल चुप रही। ठीक है अब्बा, बाद में बात करती हूँ। उसने फ़ोन रख दिया। मगर फ़ोन रखते ही उसके दिमाग में सवाल घूमने लगे। फैजान उसके घर क्यों आना चाहता था? अगर कोई ऑफिस का काम होता तो सीधे उसी से बात करता, फिर उसके अब्बा से घर का पता लेने की क्या ज़रूरत थी? वो कुछ देर तक यही सोचती रही, मगर फिर खुद को समझाकर वापस काम में लग गई। उधर फैजान अपने ऑफिस में बैठा था, मगर उसके सामने खुली फाइलों पर उसका ध्यान बिल्कुल नहीं था। वो कुर्सी पर पीछे सिर टिकाए किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। आज जो वो करने जा रहा था वो उसके लिए आसान नहीं था, शायद किसी रेड या किसी बड़े केस से भी ज्यादा मुश्किल। कभी उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती तो अगले ही पल वो घबराकर लंबी सांस लेने लगता। उसके चेहरे पर हर कुछ सेकंड बाद नए भाव आ रहे थे, क्योंकि जिंदगी में पहली बार फैजान अहमद किसी लड़की के घर उसके अब्बा से मिलने जाने वाला था। इस वक्त आई, फैजान ने मुस्कुराकर कहा था, जैसे उसके आने का ही इंतजार कर रहा हो। नूर ने बिना कुछ बोले फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। उसी वक्त दरवाजा खुला और फैजान का क्लास 4 कर्मचारी अंदर आया। सर, जो आपने स्लिप बनाकर दी थी ना, वो सारा सामान ले आया हूँ, गाड़ी में रखवा दिया है, उसने आदर से कहा। राजेश, सारा सामान मेरी गाड़ी में ही रखवाना था, फैजान ने कहा। उसका मतलब सरकारी नहीं, उसकी पर्सनल गाड़ी से था। तो सर, आप सिद्धपुर अपनी पर्सनल गाड़ी से जा रहे हैं? राजेश ने हैरानी से पूछा। हाँ, फैजान ने छोटा सा जवाब दिया। राजेश चला गया, मगर नूर की नजरें अब फैजान पर टिक गई थीं। सिद्धपुर में आपको ऐसा कौन सा जरूरी काम है? उसने सीधा सवाल किया, क्योंकि अब्बा उसे पहले ही बता चुके थे कि फैजान उनके घर आने वाला है। अब जब बात सामने आ ही गई थी तो नूर ने पूछ लिया। फैजान ने एक गहरी सांस ली, कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर आखिर बोल ही दिया, मैं आपके घर जा रहा हूँ। नूर की आंखें हल्की सी सिकुड़ी। क्यों? इस बार फैजान ने साफ और सीधा जवाब दिया, मैं आपके अब्बा से हमारी शादी की बात करने जा रहा हूँ। कमरे की हवा जैसे एक पल को थम गई। आपका हाथ मांगने जा रहा हूँ, ये कहते हुए फैजान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, जैसे उसे सचमुच डर हो कि नूर अब क्या रिएक्शन देगी। फिर अचानक वो उठकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। कैसा लग रहा हूँ मैं? उसने अपने कोट की बटन ठीक करते हुए पूछा। नूर को यकीन ही नहीं आया कि ये वही आदमी है जो बड़े बड़े अफसरों के सामने बिना डरे खड़ा रहता है। आप मेरी मर्जी के बिना मेरे घर रिश्ता लेकर जा रहे हैं, नूर ने थोड़े गुस्से में कहा। मैं अच्छा नहीं लग रहा? फैजान ने उसके सवाल को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए फिर वही पूछा। वो सच में अपने कॉलर ठीक कर रहा था। नूर ने झुंझलाकर दूसरी तरफ देख लिया। इस बार फैजान थोड़ा गंभीर हुआ। आपकी मर्जी, पूछना आपके अब्बा का काम है, मेरा नहीं, उसने नरमी से कहा। अगर मेरे माँ बाप होते तो मैं उन्हें भेजता, मगर अब अपना रिश्ता खुद ही लेकर जा रहा हूँ। नूर चुपचाप उसे देखती रही। और मुझे नहीं लगता, फैजान आगे बोला, कि आपकी मर्जी के बिना आपके अब्बा इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहेंगे, सही कह रहा हूँ ना? उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। आप मुझे पसंद है नूर, उसने पहली बार पूरी साफगोई से कहा, और मैं अपनी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहता हूँ, इसलिए आपके घर जा रहा हूँ। उसकी आंखों में इस वक्त साफ मोहब्बत थी, वही मोहब्बत जिसने उसके सख्त चेहरे को भी नरम कर दिया था। नूर कुछ पल बस उसे देखती रह गई। फैजान जानता था कि लड़की को कैसे संभालना है। मैं सिर्फ आपके अब्बा के सामने अपनी बात रख रहा हूँ, उसने मुस्कुराकर कहा। अगर उन्होंने मुझसे आपकी मर्जी पूछ ली तो? नूर ने लगभग बचकाने अंदाज में पूछा। फैजान हल्का सा हंसा। मुझे नहीं लगता वो पूछेंगे, उसने कहा। आपने उनके फोन में मेरा नंबर ब्लॉक किया हुआ है ना? वो अब तक ब्लॉक है, आपकी मर्जी के बिना मैंने नंबर अनब्लॉक तक नहीं किया। और फिर वो उसे वहीं ऑफिस में छोड़कर चला गया। नूर धीरे से अपनी चेयर पर बैठ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या महसूस करना चाहिए, गुस्सा, खुशी, घबराहट या मोहब्बत। बस उसके पेट में अजीब सी तितलियां उड़ रही थीं। उसने हल्के से अपना हाथ पेट पर रखा। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था, प्यार से, मोहब्बत से या शायद डर से, उसे खुद नहीं पता था। उधर अरमान से मिलने जुबेदा बेगम और फरीद खान आए हुए थे, क्योंकि अब तक उसकी जमानत नहीं हो पाई थी। अरमान गुस्से में बुरी तरह भड़क रहा था। कोई किसी काम का नहीं है, उसने झल्ला कर कहा, अब तक मेरी बेल क्यों नहीं हुई? हम नूर के किसी ऑफिसर से बात करेंगे, फरीद खान ने उसे समझाते हुए कहा। मैं डिप्टी कमिश्नर से मिलने गया था, मगर पता चला वो शहर से बाहर है। अरमान ने गुस्से में मुंह फेर लिया। उधर बाकी सब लोग अरमान की चिंता में लगे हुए थे और इधर नूर पूरा दिन अपने फोन की तरफ देखती रही। उसे इंतजार था कि उसके अब्बा का फोन आएगा और वो बताएंगे कि वहाँ क्या हुआ, मगर ना उसने खुद फोन किया और ना ही उधर से कोई कॉल आई। फैजान अपनी प्राइवेट गाड़ी से आया था, मगर उसकी सिक्योरिटी फिर भी उसके साथ थी। उसने खुद आगे बढ़कर गेट की बेल बजाई थी। थोड़ी ही देर में इकबाल ने आकर दरवाजा खोला था। दरवाजा खुलते ही इकबाल कुछ पल के लिए फैजान को देखते रह गए थे। सूट पहने, आंखों पर गॉगल्स, जेल से सेट किए हुए बाल, आज वो खास तौर पर तैयार होकर आया था। वैसे भी वो बेहद हैंडसम लग रहा था। फिर इकबाल की नज़र उसके साथ खड़ी सिक्योरिटी पर गई थी। ये सब उन्होंने थोड़ी हैरानी से पूछा था। मेरी सिक्योरिटी, फैजान ने हल्के से मुस्कुराकर कहा था। इसके बाद उसने अपने ड्राइवर को सामान अंदर लाने का इशारा किया था। ड्राइवर और सिक्योरिटी गाड़ी से फल, मिठाइयाँ और बाकी सामान निकालकर अंदर ले आए थे। आपकी सिक्योरिटी, इकबाल ने चलते हुए दोबारा पूछा था। डीसी को सिक्योरिटी मिलती है, फैजान ने कहा। वो सच में हैरान थे, क्योंकि नूर ने उन्हें कभी नहीं बताया था कि फैजान अब डीसी बन चुका है। आपकी बेटी ने आपको नहीं बताया, फैजान ने मुस्कुराकर कहा था। तो क्या वो आपके बारे में सब जानती है, इकबाल ने पूछा। तभी सुल्ताना बेगम भी बाहर आ गई थी। उनकी नजर सीधे उस सामान पर गई थी जो अंदर रखा जा रहा था। अरे ये सब क्या है, उन्होंने पूछा था। फैजान कुछ पल खामोश रहा था, फिर धीमे स्वर में बोला, अगर मेरे पेरेंट्स जिंदा होते तो शायद वो खुद यहाँ आते, मगर इसलिए मैं खुद ही आया हूँ क्योंकि मेरा अपना कोई नहीं है, फैजान ने धीमे स्वर में कहा था। उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए माहौल में खामोशी छा गई थी। देखिए, अगर मेरे पेरेंट्स होते तो वो शायद आपसे यही कहते कि उनका बेटा डिप्टी कमिश्नर बन चुका है, अच्छे बुरे की समझ रखता है, 5 वक्त का नमाजी है और आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। सुल्ताना बेगम और इकबाल दोनों चुपचाप उसकी तरफ देखते रह गए थे। लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है, फैजान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इसलिए अपना रिश्ता खुद ही लेकर आ गया।
आप नूर के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, सुल्ताना बेगम ने हैरानी से पूछा था। जी, फैजान ने बिना झिझक जवाब दिया था, मगर तभी इकबाल ने गंभीर स्वर में कहा था, लेकिन आपकी शादी तो हो चुकी थी, हमारा तलाक हो चुका है, फैजान ने सीधा जवाब दिया था। वो शादी सिर्फ नाम की थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इतने में ड्राइवर ने अंदर आते हुए पूछा था, सर सारा सामान यहीं रख दूं? हाँ, अंदर ले आइए, इकबाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा था। इसके बाद सभी लोग अंदर आने लगे थे।